ಶ್ರೀಕಾಳವರ್ತಿ ಅರ್ಹಂತಾಣ ಗಣಮೌಲೋಯಿ ಶೌತ್ರಿಕಾಳವರ್ತಿ ಶೀತಾಣ ಗಣಮೌಲೋಯಿ ಶೌತ್ರಿಕಾಳವರ್ತಿ ಐರ್ಯಾಣ ಗಣಮೌಲೋಯಿ ಶೌತ್ರಿಕಾಳವರ್ತಿ ಉಚ್ಚಾಯಣ ಗಣಮೌಲೋಯಿ ಶೌತ್ರಿಕಾಳವರ್ತಿ ಶೌಶಾಮ ಓಂಕಾರಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವೀರೋ ಮಂಗಳಂ ಗೌತಮೋ ಮುನಿ ಮಂಗಳಂ ಕುಂಕುಂದಾರ್ಯೋ ಜೈನ್ ಧರ್ಮೋಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಂ ಜೈನಂ ಜಯತು ಶಾಸನ. ನಮಃ ಸಮೈಶಾರಾಯ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯ ಚಕಾಶತೆ ಚಿತ್ಸ್ವಭಾವಾಯ ಭಾವಾಯ ಸರ್ವಕಾಮಾಂತರಚ್ಛಿದೆ ಹೇಗೋ ಮೇ ಶಾಶ್ವತೋಪ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಲಖನ ಶೇಷಾಮೇ ಬಾಹಿರಾ ಭಾವ ಸವೀಶಲಖನ ಮಾರೋ ಸುಶಾಶ್ವತೆ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವ છે ಬಾಕಿ બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મુક્તિ બાહ્ય છે તુસ્થાપની જને મોક્ષ પંથે ધ્યાન ભવતે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહાર કરતો કે ಓಂ ಶ್ರೀ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸಮಯಸಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೀ ಜೀವ ಅಧಿಕಾರ ಕೀ ಚೌದವೀ ಗಾಥಾ ಪರ ಅಪನಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ ರಹೀ ಹೈ. ಚೌದ ನಂಬರ್ ಕೀ ಗಾಥಾ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಕೀ ಗಾಥಾ ಹೈ. ಉಸ್ಮೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಕೇಸೆ ಪ್ರಗಟ ಹೋವೆ, ಆತ್ಮ ಕೀ ಅನುಭೂತಿ ಕೇಸೆ ಹೋವೆ, और अपना स्वभाव कैसा है वो कैसे समझ में आ जावे, ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप चौदहवीं गाथा में बताया गया है. चौदहवीं गाथा ऐसी है कि चौदहवा गुणस्थान आ जाए और गुणस्थानातीत भी हो जाए, ऐसा चौदहवीं गाथा में मर्म भरा हुआ है. ये चौदहवीं गाथा अभी पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से अपन लोगों ने अभी नैरोबी का प्रवचन सुना. ये नैरोबी का प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री नैरोबी पधारे ने तो वहाँ लोग तो कुछ अध्यात्म की बात तो बहुत दूर, आगम का भी परिचय नहीं और बाह्य में एकदम प्रवृत्तिशील लोग, उसके बीच में जाके पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसी ऐसी गाथाएं ली वहाँ जाके. देखो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, वो उसकी वाणी सर्वांगी वाणी होती है. उसकी ज्ञानी पुरुष की देशना जो होती है ना, वो देशना जो खिरती है तो समझने वाले सुनने वाले जितने श्रोता होते हैं वो सभी की जितनी जितनी माने की विपरीतता चलती होती है, वो विपरीतता कैसे चली जाए ऐसी बात पूज्य गुरुदेव श्री बताते हैं. उसकी विपरीतता चलती है उसका ज्ञान भी कराते जाते हैं और स्वभाव पर दृष्टि कैसे चले जाए, उसका श्रद्धांत कैसे द्रव्य की तरफ चला जाए, ये भी बात पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आती है. माने कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में ज्ञान की चर्चा आवे, श्रद्धा का विषय बताते रहे, उसमें श्रद्धा अहम कैसे कर ले वो भी बताते रहे, साथ साथ में वैराग्य की बात भी आवे, साथ साथ में सब जीवों को प्रेरणा कैसे मिले वो भी बात आवे और अनुभूति का काल की चर्चा भी आवे. अनुभूति में से बाहर निकल के ज्ञानी की विकल्पात्मक दशा में कैसे परिणमन होता है वो बात भी आवे. तो ये एक ही पुरुष ऐसे हो गए यहाँ भरत क्षेत्र में कि जिसने 45 साल तक एक एक प्रवचन में ये सब बातें कही है। कोई प्रवचन ऐसा ढूंढ लो ये बात सब नहीं मिलेगी, ऐसा प्रवचन नहीं मिलेगा आपको। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की 45 साल तक ये बात चली। उसमें नैरोबी में जाके पूज्य गुरुदेव श्री ने छठवीं गाथा, ग्यारहवीं गाथा, चौदहवीं गाथा, पंद्रहवीं गाथा, 17-18 गाथा, 31 गाथा, 38 गाथा, ऐसी महत्वपूर्ण गाथाओं का स्वाध्याय करवाया कि लोगों को पता ही नहीं कुछ वहां तो। मगर आगम का सारभूत अध्यात्म एकदम सरल भाषा में जीवों के समक्ष रख दिया। अभी ये प्रवचन अपन नैरोबी का सुने ने, इतना सरल लगे, इतना सरल लगे कि जैसे अनुभूति अपने हाथ में ही होवे। ऐसी बात पूज्य गुरुदेव श्री बताते हैं। ऐसा ऐसा जो जो गाथा है, जो जो विषय पूज्य गुरुदेव श्री का चलता है, इसमें ये चौदहवीं गाथा जो है, वो चौदहवीं गाथा में 5 बोल से बद स्पष्ट और अबद स्पष्ट, माने कि त्रिकाली द्रव्य की चर्चा और पर्याय की चर्चा, वो दोनों चर्चा करके पर्याय ऊपर से दृष्टि छूट के द्रव्य पर दृष्टि कैसे चली जाए, पर्याय का ज्ञान करके वो पर्याय का ज्ञान रह जाए और द्रव्य तरफ ज्ञान भी कैसे चला जाए, और पर्याय में पर्याय पना छूट जाए और पर्याय में द्रव्य पना कैसे आ जाए। द्रव्य तो पर्याय में आता नहीं, पर्याय में पर्याय पना तो अभी चल रहा है, वो पर्याय पना छूट जाता है और पर्याय में द्रव्य पना आ जाता है, द्रव्य नहीं आता। जितना द्रव्य का सामर्थ्य है वो द्रव्य का सामर्थ्य पर्याय में आ जाता है, पर्याय में प्रतिष्ठित हो जाता है, पर्याय में प्रकट रूप हो जाता है, उसको बोला जाता है अनुभूति। ऐसी चर्चा यहाँ चौदहवीं गाथा में आचार्य भगवान ने कही है। अपन ने कल शुरू किया था, इतनी इतनी मार्मिक बातें इस चौदहवीं गाथा में बली है। गाथा भी बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। 6-7 दिन तो बहुत कम है इसके लिए, ये 1 महीना चले ऐसी गाथा है, कम से कम 1 महीना चले ये गाथा। अगर अपन चलाए इस तरीके से तो 1 महीना ये गाथा चले। इसमें इतनी रहस्य भरा है एक गाथा में, क्योंकि ये 14वां गुणस्थान आए ऐसी 14वीं गाथा है और गुणस्थानातीत हो जाए ऐसी गाथा है, इसलिए बहुत लंबी चले ये, ऐसा प्रकरण इसमें रख दिया है। देखो इसमें क्या कहते हैं, गाथा है, गाथा का एक बार अपन हरि गीत का पाठ कर लेंगे। अबद स्पष्ट अनन्य निज नियत देखे आत्मने अविशेष अन संयुक्त देने शुद्ध नय तू जान जे। देखो गाथा में कहते हैं, उसकी टीका है, का पहला पैराग्राफ है, निश्चय से अबद अस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त। ऐसा अपना आत्मा है, अपना आत्मा कैसा है कि वो अबद स्पष्ट है, माने कि अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। तो ये अबद्ध स्पष्ट आदि 5 भाव है, वो त्रिकाली द्रव्य के भाव है, और उसके सामने जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव बताए जाएंगे, वो बद्ध स्पष्ट आदि भाव है, वो पर्याय के भाव है। वो पर्याय में ऐसे 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 भाव की प्रगटता प्रति समय चलती है, और द्रव्य का भाव उसके सामने देखे तो बद्ध स्पष्ट भाव है उसके सामने अबद्ध स्पष्ट है, अन्य अन्य भाव है उसके सामने अनन्य भाव है, माने कि नियत अनियत भाव है वहाँ तो यहाँ नियत भाव है, वहाँ विशेष भाव है तो यहाँ द्रव्य में अविशेष भाव है, वहाँ मोह से संयुक्त भाव है तो यहाँ असंयुक्त भाव है। ऐसे द्रव्य और पर्याय का ये गाथा में भेद ज्ञान बताया गया है। भेद ज्ञान हमेशा 2 के बीच में होता है, और दो चीज क्या है अपने पास, कि अपने पास एक द्रव्य है और एक द्रव्य के दो स्वभाव है, और एक द्रव्य के दो स्वभाव में एक क्षणिक स्वभाव है और एक त्रिकाली स्वभाव है। क्षणिक स्वभाव में क्या होता है कि क्षणिक स्वभाव उत्पाद व्यय वाला होता है, और त्रिकाली स्वभाव है वो ध्रुव रूप रहता है। क्षणिक स्वभाव उत्पाद व्यय वाला होता है, उसमें दो प्रकार होते हैं, उसमें एक तो अशुद्धता का परिणमन भी चलता है और एक दूसरा अशुद्धता का परिणमन चला जाने से शुद्धता का परिणमन शुरू हो जाता है। और त्रिकाली द्रव्य जो भाव है, वो त्रिकाली उपादान वाला भाव है, वो नित्य भाव है, स्थिर भाव है, ध्रुव भाव है, एक रूप भाव है। उसमें ना तो कोई परिणमन है, ना तो कोई उत्पाद वाली पर्याय है, ना तो कोई विभाव है, ना तो कोई शुद्ध पर्याय भी है। उसमें शुद्ध पर्याय भी एक समय की होती है, अशुद्ध पर्याय भी एक समय की होती है, और वो एक समय की पर्याय वो पर्याय स्वभाव में चलती रहती है, और द्रव्य स्वभाव है वो उससे सर्वथा पृथक हमेशा रहता है। निगोदिया जीव में ले लो, सिद्ध का जीव में ले लो, उसके बीच में जितने जितने गुणस्थान की परिपाटी चलती है, कोई भी माने कि पर्याय चलती हो, गुणस्थान चलता हो, तो वो त्रिकाली द्रव्य में सर्वथा उसका अभाव रहता है। ऐसा मेरा अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसा पांच विशेषण वाला पांच भावों स्वरूप एक आत्मा नित्य स्थिर अपने में अपने से प्रकाशमान है, अपने से अपने में प्रकाशमान है। उसको किसी को प्रकाशमान करना नहीं है, वो स्वयं चैतन्य ज्योत जागती ज्योत अपने से अपने में प्रकाशमान नित्य उद्योत रूप माने प्रगट रूप है, वो जाज्वल्यमान ज्योति है, वो ऐसी ने ऐसी ज्योति प्रति समय प्रगट रूप है। वो प्रगट रूप जो सत्ता है और एक पर्याय भी उत्पादी रूप प्रगट रूप सत्ता है, ये दोनों भाव प्रति समय में अपने पास प्रमाण का द्रव्य की अपेक्षा से देखे तो ये दोनों प्रमाण की एक सत्ता में एक नित्य स्थिर भाव है और एक अनित्य भाव है। ऐसी एक सत्ता मेरे पास अभी विद्यमान चल रही है, अभी वो विद्यमान सत्ता है। उसमें यहाँ ये बताना चाहते हैं कि निश्चय से अवध अस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसा तेरा आत्मा है, तो वो ऐसा आत्मा को अबद्ध स्पष्ट कहा। तो अबद्ध अस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष, वो चारों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाना है, माने कि अबद्ध स्पष्ट है वो द्रव्य का बोल है, माने कि फिर वो अनन्य है वो क्षेत्र का बोल है, और नियत है वो काल का बोल है, और जो उसमें अविशेष बताया गया वो भाव का बोल है। द्रव्य माने निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र माने असंख्य प्रदेश, काल माने उसकी त्रिकालता, भाव माने उसके अनंत गुण। ऐसी एक त्रिकाल सत्ता जो मेरी है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कभी खंडित नहीं होती। ऐसी एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित मेरी सत्ता है और वो असंयुक्त पने रहती है, वो किसी से संयुक्त नहीं होती। वो सत्ता द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप अपना अखंड चैतन्य परमात्मा है। द्रव्य माने वो अपना निर्विकल्प वस्तु माने द्रव्य है, और बद्ध स्पष्ट आदि में जो बताया कि वो पहले में पहला बोल आया बद्ध स्पष्ट आदि का, वो कर्म की सत्ता वाला बोल है। तो कर्म है वो पर द्रव्य है, और अबद्ध स्पष्ट है वो स्वद्रव्य है। तो पर द्रव्य स्वद्रव्य में नहीं होता। बाद में दूसरा बोल आया अनन्य वाला, तो अनन्य वाला है वो क्षेत्र का बोल है। तो क्षेत्र माने क्या कि पर क्षेत्र जो है वो पर क्षेत्र में मनुष्य देव तिर्यंच नारक गति होती है, और मेरा स्व क्षेत्र है वो स्व क्षेत्र में असंख्य प्रदेश व्यापक होते हैं त्रिकाली द्रव्य में। ऐसा मेरा असंख्य प्रदेश ही आत्मा है,
और वो पर क्षेत्र कहा तो मेरी ही एक क्षेत्रा होगा सत्ता में व्यंजन पर्याय रूप देखें तो उसमें मनुष्य देव तिर्यंच नारक ऐसी चारों गति की पर्याय की योग्यताएं अंदर में पड़ी हुई है, उसको बोला जाता है पर क्षेत्र। और असंख्य प्रदेशी आत्मा त्रिकाल जो है कि उसके प्रदेश एक एक प्रदेश ऐसे असंख्य प्रदेशी आत्मा है। एक प्रदेशी आत्मा पंचास्ती काय में बोला वो अलग अपेक्षा है, जिन जैन दर्शन में दिगंबर दर्शन में असंख्य प्रदेशी आत्मा ही मान्य है। एक प्रदेशी आत्मा नहीं होता, असंख्य प्रदेशी ही होता है आत्मा। ऐसा असंख्य प्रदेश वाला अपना आत्मा है, जो असंख्य प्रदेशी आत्मा है उसमें पर क्षेत्र रूप जो मनुष्य देव तिर्यंच नारक की गति जो अन्य 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 रूप है जो बद स्पष्ट आदि भाव में कही गई है, एक कर्म की सत्ता कही वो पर द्रव्य में जाती है, एक मनुष्य देव तिर्यंच नारक की सत्ता कही वो अन्य अन्य गति में जाती है, माने कि अन्य अन्य क्षेत्र में जाती है वो। और अपना क्षेत्र है वो तो त्रिकाल क्षेत्र है, असंख्य प्रदेशी क्षेत्र है, ऐसा मेरा क्षेत्र है। ऐसा एक द्रव्य का बोल वो अबद्ध स्पष्ट वाला, एक क्षेत्र का बोल वो अनन्यपना वाला। मेरा जो स्वभाव है वो असंख्य प्रदेशी क्षेत्र से अनन्य रूप वर्तता है, और जो गति आदि होती है वो अन्य 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 क्षेत्र होता है उसका, तो उसको बोला जाता है माने कि पर क्षेत्र। अभी अबद्ध स्पष्ट अनन्य, अभी नियत, तो नियत क्या होता है कि नियत मेरा त्रिकाल काल जो है वो नियत है। नियत है माने कि वो शाश्वत काल है, वो त्रिकाल काल है। पूर्व में भी मेरा ऐसा ही काल था, वर्तमान में भी मेरा त्रिकाल काल ऐसा है, भावी में भी अनंत काल तक मैं त्रिकाल रहने वाला हूं। ऐसी कोई काल की अपेक्षा के बिना का त्रिकाल स्वरूप मेरा है उसको नियत स्वभाव बोला जाता है। वो नियत स्वभाव में माने कि बदस्पष्ट आदि भाव में जो हानि वृद्धि वाली बात कही गई है, पर्याय में जो उत्पाद व्यय वाली जो सत्ता चल रही है, प्रत्येक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय का उत्पाद होता है और दूसरे समय में वो पर्याय का व्यय हो जाता है, ऐसी हानि वृद्धि वधघट वाली पर्याय जो अगुरु लघु गुण में आई है, संख्य भाग असंख्य भाग है अनंत भाग, ऐसी वृद्धि और हानि ऐसी जो चर्चा अनंत गुणी असंख्य गुणी संख्य गुणी अनंत भाग असंख्य भाग और संख्य भाग, ऐसी हानि और ऐसी वृद्धि, ऐसी जो पर्याय में समुद्र की जो लहरें चल रही है वो लहरें चलती है, वो उत्पाद वाली लहरें होती है, उसको बोला जाता है परकाल। वो परकाल है। और जो मेरा जो काल है, मेरा जो नियत काल है, मेरा जो नियत स्वभाव है, वो मेरा स्वकाल है, वो मेरा त्रिकाल स्वकाल है, मेरा एक रूप स्वकाल है, वो नित्य स्थिर ऐसा एक रूप त्रिकाल रहता हूं मैं। ऐसा एक द्रव्य का बोल स्वद्रव्य हूं पर द्रव्य नहीं हूं, एक क्षेत्र का बोल असंख्य प्रदेशी मेरे क्षेत्र है, और जो अन्य अन्य गति बताई रही है वो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो पर क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र अनन्य रूप रहता है, और मेरा काल जो है वो मेरा त्रिकाल काल है। त्रिकाल काल माने कि कोई भी समय में मेरे में मेरे से मेरे पने में मेरा ही अस्तित्व मेरे ही आधार से मेरे में रहता है, मेरे ही उपादान मेरे संप्रदान मेरा आधार मेरा अधिकरण मेरा कर्ता मेरा करण से और कर्म से मैं मेरे में ही रहता हूँ, उसको बोला जाए त्रिकाल। त्रिकाल काल वो मेरी सत्ता त्रिकालता से भरी हुई है। ऐसे षटकारक द्रव्य में शक्ति रूप पड़े हुए हैं, पर्याय में परिणमन रूप षटकारक होते हैं। द्रव्य के षटकारक पृथक रहते हैं, वो शक्तियां भी आई है आखिरी में, कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण, वो त्रिकाल षटकारक है। ऐसे त्रिकाल षटकारक से त्रिकालता रूप में अपने स्वभाव में नियत रूप से रहता हूं, उसको मेरा स्वकाल त्रिकाल काल बोला जाता है। और जो पर्यायों में हानि वृद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि वधघट वधघट चल रही है, जैसे निगोदिया जीव में अक्षर का आनंद का भाव अनंत भाग का ज्ञान है, और अरियंत को तो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है, तो वो जो हानि वृद्धि पर्याय में हो रही है वो परकाल है, वो मेरा काल नहीं है। मेरा तो त्रिकाल काल है, नित्य स्थिर अवस्थित मेरा काल है, उसको नियत स्वभाव बोला जाता है, और ये परकाल है उसको अनियत स्वभाव बोला जाता है। बाद में आता है भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और वहां आता है अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष। तो अविशेष माने विशेष माने गुण, अविशेष माने गुणी। तो गुणी रूप परमात्मा भाव माने गुण, भाव माने गुणी, भाव का अभेदपणा को बोला जाता है गुणी, और एक एक भाव रूप गुण है उसको बोला जाता है विशेष। तो ये विशेष जो भाव है, गुण भेद के जो भाव है, विशेष रूप जो भाव चल रहे हैं, वो तो पर्यार्थिक नहीं का विषय है। गुण भेद को देखने वाली पर्याय होती है, तो पर्यार्थिक नहीं का विषय हो गया वो। और मेरा जो भाव है, मेरा जो अनादि अनंत भाव है, मेरा अनंत गुणात्मक भाव है, मेरा त्रिकाल जो भाव है, वो अविशेष रूप रहता है। अविशेष माने कि गुणों के विशेष रूप भेद मेरे अविशेष में कभी समाहित नहीं होते। ऐसे एक एक गुण करके अनंत गुण होने पर भी अनंत गुणात्मक एक मेरा अविशेष रूप भाव है, अनंत गुण के भेद मेरे में नहीं है। प्रत्येक गुण की लक्षण रूप स्थिति पृथक पृथक होने पर भी ज्ञान का लक्षण जानना, श्रद्धा का लक्षण प्रतीत करना, चारित्र का लक्षण ठहरना, स्वच्छत्व शक्ति का लक्षण प्रतिबिंबित पर पदार्थ होना और स्वप्रतिबिंबित होना, ऐसी स्वच्छता, वीर्य का लक्षण माने कि पुरुषार्थ माने कि अपने स्वभाव में ही रहना, ये सब जो उसके लक्षण बताए गए है, विभु गुण का लक्षण व्यापक होना, ये सब जो अपने लक्षण से पृथक पृथक गुण की स्थिति है, मगर मैं तो अविशेष परमात्मा हूं, ऐसे गुण भेद से गुणी को बताया जाता है, मगर आत्मा गुणी है, उसमें गुण भेद नहीं है। बताने के लिए, समझाने के लिए गुण भेद करके समझाया जाता है, क्योंकि अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाए बिना वो समझ सकता नहीं है, इसलिए उसको गुण भेद करके समझाने का व्यवहार होता है। मगर वो व्यवहार क्या समझाता है कि वो व्यवहार अभेद को बताने के लिए है। दर्शन नान चारित्र को हमेशा प्राप्त होवे वो आत्मा, तो वो दर्शन नान चारित्र का भेद करके बताना क्या है कि दर्शन नान चारित्र को हमेशा प्राप्त होवे वो आत्मा बताना है। वो आत्मा अविशेष है, आत्मा अनंत गुणात्मक है, आत्मा अपने में अपने से व्यापक रूप रहता है अनंत गुणों में, ऐसा एक अपना त्रिकाल भाव रूप अविशेष रूप अपना वास्तविक स्वभाव वहां पड़ा है। और जो बदस्पष्ट आदि में जो भाव बताए जाते हैं कि कर्म से बंधा हुआ है, अन्य अन्य गति में जाता है, हानि वृद्धि वाला है, और विशेष रूप गुण भेद है, तो वो सब पर्याय की कोटि में चला जाता है। और यहाँ जो अबध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष संयुक्त रूप पांच भाव रूप पांच विशेषण रूप एक परमात्मा त्रिकाली द्रव्य है, वो मेरी सत्ता है। तो वो मेरी सत्ता में द्रव्य माने अपना त्रिकाल स्वभाव, क्षेत्र माने असंख्य प्रदेश, काल माने अपनी त्रिकालता, भाव माने अनंत गुण, ऐसे अपने जो असंख्य प्रदेश है वो एक एक प्रदेश में एक एक प्रदेश में अनंत गुण उसके उसमें व्यापक रहते हैं। एक एक प्रदेश में अनंत गुण, कोई भी प्रदेश पर आप दृष्टि करो तो वहां अनंत गुण है, वहां ऊपर ऊपर अनंत गुण वहां पथरे हुए दिखते हैं। देखो ये है ना, ये ऐसे प्रदेश होते हैं, ये असंख्य प्रदेश ऐसे होते हैं, और उसमें ऐसे उसके प्रदेश के ऊपर अनंत गुण ऐसे व्यापक रहते हैं, ऐसे व्यापक रहते हैं। एक एक प्रदेश आप देखो ऐसा, तो ये एक एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापक रहते हैं, इसलिए कोई प्रदेश खाली नहीं होता अनंत गुणों से। प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण की व्यापकता रहती है, और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण की व्यापकता रहती है, वहां अनंत गुण की अनंत पर्याय ऊपर ऊपर प्रकट होती है। ये जो एक एक प्रदेश में अनंत गुण की व्यापकता है, वो तो अपनी त्रिकालता को सिद्ध करती है, वो तो अनंत गुणात्मक भाव को सिद्ध करती है, असंख्य प्रदेशी आत्मा को सिद्ध करती है, वो अपनी त्रिकालता को बताती है, वो अपनी निर्विकल्प वस्तु को बताती है। वही प्रदेश में जहाँ वो प्रदेश है, एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुण पथरे हुए पड़े हैं, वो प्रदेश के ऊपर ऊपर जो भाव चलता है पर्याय रूप उत्पाद वाला, उसको यहाँ बद स्पष्ट आदि भाव में डाला है। और जो अपने गुण है वो गुण है और उसके असंख्य प्रदेश है, एक एक प्रदेश में गुण व्यापक पड़े हुए हैं, उसको यहाँ रखा गया है त्रिकाली द्रव्य की सत्ता में। ऐसी एक अपनी वस्तु, ऐसी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में से अपने को द्रव्य देखना है, द्रव्य देखना है, उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद नहीं देखना है, अपने को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित अपनी एक वस्तु है, वो वस्तु एक है, वो वस्तु ज्ञायक है, वो वस्तु बुद्धार्थ है, वो वस्तु शाश्वत है, वो वस्तु ध्रुव पिंड है। इतना विस्तार करके बताने के लिए इसकी क्या जरूरत है? आप यूं ये क्या कह रहे हो, इसकी जरूरत क्या है? पर द्रव्य नहीं है और स्वद्रव्य है, ने स्वद्रव्य का द्रव्य है, ने स्वक्षेत्र में असंख्य प्रदेश है, ने स्वकाल में त्रिकाल है, ने त्रिकाल में एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, मात्र ज्ञायक बोल दो क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया, जाना है तो ज्ञायक में, मगर ये अपना ज्ञायक में क्या भरा है, अपना क्या ज्ञायक में भरा है वो तो मालूम नहीं है, अपनी सत्ता कैसी है वो मालूम नहीं है, अपनी सत्ता में क्या क्या पड़ा है वो तो पता नहीं है, हैं? कि अपनी एक रूप निर्विकल्प सत्ता है, उसमें असंख्य प्रदेश है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, ऐसी अपनी त्रिकालता पड़ी हुई है, ऐसा मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित एक रूप स्वभाव है, इससे महिमा आती है आत्मा की, आत्मा की ज्ञायक की महिमा आती है। ऐसे है तो ज्ञायक, ऐसी इसकी महिमा कैसे आवे, उसका अंदर का स्वरूप उसे पता चले, उसकी अंदर में क्या पड़ा है। नहीं तो क्या होता है कि वो ज्ञायक बोलता है मगर उसका लक्ष्य वो बद स्पष्ट आदि भाव पर चला जाता है, क्योंकि तो इसकी महिमा नहीं आई, इसका पता नहीं है क्या पड़ा है। अभी इसका पता है कि अंदर में ऐसी कोई संपत्ति मेरे पास पड़ी है, ऐसा कोई अंदर में मेरा वैभव अंदर में विद्यमान है, ऐसा कोई मैं समृद्धशाली परमात्मा हूं, ऐसा जब उसे ज्ञान में ख्याल में आता है तो उसकी महिमा का प्रकार यहां न यहां चला रहता है। असंख्य प्रदेश में विचार करे, अनंत गुण का विचार करे, अपनी त्रिकालता का विचार करे, अपने निर्विकल्प वस्तु का विचार करे, और वो विचार करते 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 ऐसी श्रद्धा में बात ज्ञान में बैठी हो, ऐसी श्रद्धा में आ जाए कि ये कोई भेद मेरे में नहीं है, मैं तो अभेद हूँ, ऐसा श्रद्धांग कर ले, ऐसे श्रद्धांग हो जाता है। खाली बोलने से श्रद्धांग नहीं होता है, श्रद्धा तो सबको श्रद्धान करना है, मगर श्रद्धान की विधि होती है। श्रद्धान कैसे होता है? स्वरूप समझने से श्रद्धान होता है, स्वरूप के अंदर की व्यवस्था समझने से श्रद्धान होता है, स्वरूप के अंदर की स्थिति समझने से उसकी महिमा आती है। जहां महिमा होती है वहां रुचि जाती है, और जहां रुचि जाती है तो उपयोग पलटे बिना रहता ही नहीं। ये स्थिति है जीव की, ऐसी अपनी त्रिकालता भरी पूरी पड़ी है अंदर में, अंदर में ऐसा स्वभाव परिपूर्ण भरा पड़ा है, ऐसा स्वभाव है अपना, इतना विस्तृत स्वभाव है, इतना अमर्यादित स्वभाव है, इतना विस्तार है अंदर में कि ज्ञानी पुरुष जब अंदर में जाते हैं तो बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते, इतना उसको अंदर में जच जाता है, इतना अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन आता है, इतना चैतन्य का रस टपकता है अंदर से, ऐसी परिणति उसकी चलने लगती है, कोई बार सदुपयोग और निरंतर परिणति, ऐसी कोई ज्ञानी जीव की स्थिति हो जाती है कि वो अपने आत्मा को कभी छोड़ते ही नहीं। वो क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उसने महिमा और रुचि पूर्वक अपने आत्मा का अवलंबन करके उसमें अपनी पर्याय में अपना द्रव्य की स्थापना करके उसकी अनुभूति कर ली है, इसलिए वो वहां से निकलते ही नहीं। कभी वो विकल्प में आते हैं ना, ऐसा ये सब बातें तो है ना, वो विकल्प में आते हैं ना, वो विकल्प को अपना ज्ञानी मानते ही नहीं, वो तो पर्ग नहीं के खाते में सब चला गया, वो ज्ञान का पर्ग नहीं है ऐसा भी नहीं देखते हैं। वो अपने को देखना छोड़ते ही नहीं कभी। नानी की स्थिति ऐसी होती है, उपदेश देने का विकल्प आता है ना, तो उपदेश देने का विकल्प के टाइम में भी परिणति काम करती रहती है अंदर, परिणति बिल्कुल छुट्टी नहीं है। और ज्ञानी पुरुष उपदेश भी देते हैं, उपाय भी बताते हैं, उसको ज्ञानी बोला जाता है। उपदेश तो कोई भी दे देवे, उपदेश देना सरल है बहुत, उपदेश में कोई इतना पुरुषार्थ नहीं है, उपाय बताने में पुरुषार्थ है। उपाय बताओ कि भाई कैसे आत्मा की प्राप्ति होवे, कैसे मुझे अनुभूति होवे, कैसे मुझे स्वसंवेदन हो जाए, कैसे मैं भव से निवृत्त हो जाओ, कैसे मेरा दुख मिट जाए, कैसे मेरे सुख की प्राप्ति हो जाए, कैसे संसार का अभाव हो जाए, कैसे मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष में मैं चला जाऊं, वो उपाय बतावे वो ज्ञानी है, वो पूज्य गुरुदेव श्री बताते हैं अपने को। उपदेश भी देते हैं, उपाय भी बताते हैं, उपाय का फल आएगा वो भी बताते हैं। ये शैली है पूज्य गुरुदेव श्री की। तो ये जो यहां चौदहवीं गाथा में जो कहना चाहते हैं, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित मेरा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त। असंयुक्त माने मेरे स्वभाव से ही संयुक्त पना रख के कोई राग आदि भाव से माने कि संयुक्त नहीं हुआ, ऐसा मेरे अनंत गुणों से माने कि अभेद रूप रहता हुआ किसी से असंयुक्त नहीं हुआ, ऐसा मेरा स्वभाव है। वो असंयुक्त माने कि मोह से संयुक्त नहीं हुआ, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित एक चैतन्य परमात्मा वो मैं हूं, और वो मैं हूं ऐसा ज्ञान पूर्वक श्रद्धान जब होता है, ज्ञान में जानना चलता है, श्रद्धान में प्रतीति आती है। ज्ञान जानने के लिए समर्थ है, प्रति समय ज्ञान का व्यापार जानने का प्रति समय चल रहा है। अभी वो जानने का व्यापार चलने के टाइम में भी अज्ञानी जीव को श्रद्धा में तो मिथ्या तो चल रहा है। अभी जानना तो निरंतर चल रहा है, वो जानने में वो निर्णय की भूमिका में भी आ जाता है। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा आत्मा है ऐसा जानने में उसको ख्याल भी आ जाता है। बद्ध स्पष्ट आदि भाव है, वो बद्ध स्पष्ट आदि भाव पांचों भाव रूप में नहीं हुआ हूँ ऐसा भी निर्णय हो जाता है। देखो मुमुक्षु की स्थिति ऐसी है कि पूज्य गुरुदेव श्री की सब बातें बाहर आ गई, शास्त्र भी उसके बन गए, तो आज तो मुमुक्षु की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये सब बातें सबको पता नहीं है ऐसा नहीं है, सबको पता है ये सब बातें, मगर पुरुषार्थ सम्यक प्रकार का चलना चाहिए, वो चलता नहीं है उसका। क्योंकि क्या है, भाई साहब ले रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी गाथा 144वीं पक्षातिक्रांत वाली गाथा, कहीं ना कहीं पक्ष पे पड़ा रहता है जीव, पक्ष मात्र झेर है, कोई भी पक्ष हो, पर्याय का पक्ष हो कि द्रव्य का पक्ष हो, आता जरूर है पहले द्रव्य का पक्ष। द्रव्य का पक्ष आए बिना पक्षातिक्रांत होता ही नहीं कभी कोई जीव, मगर उसको मालूम होना चाहिए कि अभी मैं पक्ष में पड़ा हूं, वो ज्ञान बताता है उसको, वो ज्ञान उसको बताता है, उसको जागृति कराता है, वो जागता देव है, ये ज्ञान है ना, वो जागृत देव है, सदाए जागता हुआ रहता है, सदाए जानता हुआ रहता है, वो सब उसके ख्याल में आता है। द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, अभी भाव कौन सा चल रहा है, अभी अभिप्राय कहाँ काम कर रहा है, अभी मेरी स्थिति में रागादि भाव चल रहे हैं कि वितरागता का विकल्प चल रहा है, ये सब ज्ञान जानता है, सब वो ज्ञान में हे उपादेय करने की ताकत है। श्रद्धा तो सिद्धि उपादेय वस्तु को स्वीकार कर लेती है, मगर ज्ञान में हे उपादेय हुए बिना श्रद्धा को विषय ही नहीं मिलता है। ज्ञान में हे उपादेय पना पहले आता है, देखो पर्याय है पर्याय परद्रव्य है, पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, मगर उसको हे तो बोल दिया, हे कब बोला जाता है और हे की सार्थकता कब होती है, जब आत्मा उपादेय होता है। जब तक आत्मा उपादेय नहीं होता तब तक पर्याय है पर्याय परद्रव्य है, पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, अभी वो विकल्पात्मक दशा में चला गया, वो आत्मा उपादेय होता है तब पर्याय है होती है, और बाद में वो पर्याय को ज्ञेय रूप जानता है, ये पर्याय तो ज्ञेय है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो उत्पादे मेरा परिणमन मेरा नहीं है, मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ, ऐसी ज्ञान में स्थिति नक्की होती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो नहीं अपने आत्मा को बतावे उसको हम शुद्ध नहीं कहते हैं। बताना है श्रद्धा का विषय, श्रद्धे बात उठाते हैं ज्ञान से। देखो ये कमाल आचार्य भगवान की ऐसी देन है, ऐसी सूक्ष्मता से कोई पॉइंट रख देते हैं कि वो अज्ञानी होता है ना, वो क्या होता है उसकी स्थिति में कि जब वो चलता है ना, तब कोई नूर का हीरा आवे ना तो उसको ऐसा विचार आता है कि अंधा कैसे चलता होगा, तो वो आंख बंद करता है, कोई नूर का हीरा चला जाता है फिर आंख खोलता है, वो ऐसा अंधा है अज्ञानी। आचार्य भगवान उसको जागरूक कराते हैं कि तू जाग जा, जाग जा, जाग जा, तेरा स्वरूप तेरे पास है, तुझे कोई नहीं दे सकेगा तेरा स्वरूप, तेरा स्वरूप की मस्ती तू अंदर में तेरे स्वभाव में से प्रकट करने का प्रयत्न कर, और तेरा स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है, ऐसा परिपूर्ण है कि सिद्ध जैसे जाननहार है ऐसा मैं जाननहार हूं ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव है ऐसे सिद्ध परमात्मा है, ऐसा तेरा स्वभाव है, ऐसी तेरी परिपूर्णता है, ऐसी तेरी जाज्वल्य मानता है, ऐसी तेरी विस्तृत अंदर में अमर्यादितता पड़ी हुई है, इतना विस्तृत है परमात्मा, इतना ज्ञायक भाव विस्तृत है, इतनी उसकी परिपूर्णता से वो विस्तार से पड़ा हुआ है, विस्तार सामान्य समुदाय से पड़ा हुआ है, वो उसमें इतनी विस्तृतता है, इतनी विस्तृतता है कि निर्विकल्प दशा में जब ज्ञानी अपने स्वभाव की प्रतीति करके सम्यक ज्ञान में स्वरूपाचरण चारित्र में आरूढ़ होता है, असंख्य समय तक निर्विकल्प दशा चलती है, वो ज्ञानी अपने ज्ञान में पूरा द्रव्य स्वभाव को भले प्रदेश प्रत्येक श्रुत ज्ञान में न होवे तो भी उसको कैसा ज्ञायक है ऐसा एकदम श्रुत ज्ञान में पता चल जाता है, उसी को भाव श्रुत ज्ञान बोलते हैं। ज्ञानी को सब पता चल जाता है, ये पर्याय अब आने वाली है, ऐसी पर्याय होने वाली है, ऐसा मेरा अकर्ता स्वभाव है, वो सब जानना, क्योंकि सब द्रव्यों में पड़ा हुआ है, कोई पर्याय बाहर से नहीं आती, कोई पर्याय पर्याय में से नहीं आती, सब द्रव्य में पड़ा है, सब द्रव्य में से निकलने वाला है, स्वभाव स्वरूप सब द्रव्य में से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद सब पर्याय अंदर से आने वाली है, पर्याय अंदर से आती है वो व्यवहार है, मगर आती कहीं से नहीं, अंदर से ही आती है, ऐसा स्वरूप है। तो ज्ञानी जब निर्विकल्प दशा में आरूढ़ हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, अपना स्वभाव को अखंड रूप से देख लेते हैं, तब उसकी निर्विकल्प दशा आती है, तो निर्विकल्प दशा में उसको जो अतीन्द्रिय आनंद आता है वो उसी समय उसको वेदन होता है उसका, उसी को निर्विकल्प दशा बोलते हैं, उसी समय जानना होता है कि आनंद चल रहा है। अगर विकल्प में आवे तब ऐसा जानना होवे, और निर्विकल्प दशा में न होवे तो ज्ञानी नहीं है वो। आनंद का प्रमाण ज्ञान से नक्की होता है, ज्ञान का जानना आनंद है, तो ज्ञान जाने बिना रहता ही नहीं, निर्विकल्प दशा के काल में जानना चालू रहता है, प्रतीति में अहम चलता है, ज्ञान में जानना चलता है। ये जानना स्वभाव कोई कोई समय में बंद नहीं होता, सिद्ध में भी जानना चलता, निगोद में भी जानना चलता, बिचली बीच वाली सब अवस्था में जानना 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 स्वभाव चलता ही रहता है, मगर जानने में निर्विकल्प के काल में विकल्प बंद हो जाता है, जानना स्वभाव रह जाता है। ऐसी कोई सत्ता जो जीव समझ लेता है उसको अनुभूति 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 चलती रहती है, श्रद्धा में प्रतीत चलती रहती है, ज्ञान में अनुभूति चलती रहती है, और चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र चलता रहता है लीनता रूप। और जब विकल्प में भी ज्ञानी आ जाता है तो विकल्पात्मक दशा में भी उसकी प्रतीति रूप परिणति निरंतर काम करती रहती है, वो श्रद्धा के बल से शुद्धात्मा के बल से परिणति उसको छोड़ती नहीं, शुद्धात्मा को उसका बल इतना प्रगाढ़ हो गया है अंदर में कि अपने द्रव्य स्वभाव को वो श्रद्धा कभी छोड़ती ही नहीं, चाहे भले ज्ञान का उपयोग बाहर चला जाए, उपयोग बाहर गया वो उपयोग ज्ञानी का है ही नहीं, जितना अंश अंदर काम कर रहा है वो ज्ञानी का अंश है, बाकी जितना बाहर उपयोग गया विकल्प आया वो ज्ञानी का कुछ है ही नहीं, वो उसको अपना मानते जानते ही नहीं। बाद में नई की अपेक्षा से देखो तो ऐसा कहते हैं कि कितनी अधूरास है, कितनी अस्थिरता है, अभी क्या भाव चल रहा है, वो सब ज्ञान में जानने में आ रहा है। ज्ञान है ने ऐसा सरदार है कि वो माने कि सब जान लेता है, गलतियां जितनी होती है उसका भी ज्ञान हो रहा है, और माने कि अविपरीतता रूप स्वभाव चल रहा है उसका भी ज्ञान होता है। ऐसी स्वपर प्रकाशक स्थिति ज्ञान में चलती है, निरंतर प्रति समय चलती रहती है। तो ज्ञानी जब अंदर जाता है, ज्ञानी जब अपनी अखंडता को देखता है, तो वो ज्ञानी अपने स्वभाव में ऐसा परिपूर्ण स्वभाव में लवलीन हो जाता है कि वहां से उसको इतना चैतन्य रस, चैतन्य की बूंद बूंद टपकती रहती है वहां पे, उसको अनुभूति बोला जाता है। ऐसी अनुभूति की कीमत है, ऐसी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बहुत कीमती चीज है। ऐसी परिपूर्णता को जो स्वीकार करता है उसको ऐसी अनुभूति होती है। स्वीकार परिपूर्णता का किए बिना अनुभूति किसी को नहीं हो सकती। खाली विकल्पात्मक दशा में माने कि अभी प्रकाश भाई बोल रहे थे ना कि वो गोखण पट्टी करता है, मेघनायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं निर्बोज हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं अविनश्वर हूँ, मैं अपरिणामी हूँ। अभी ये तो भैया किसको नहीं पता है कि वो ऐसा है, इसमें कोई ऐसे बैठे है कि उसको पता नहीं कि मेरा द्रव्य स्वभाव ऐसा है, और यहाँ किसको पता नहीं है कि पर्याय में अभी ये सब भाव चल रहा है। तो अभी करना क्या है, यथार्थ समझ जब तक द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की नहीं होती, तब तक वो समझ वाली पर्याय और श्रद्धा की पर्याय द्रव्य की तरफ झुकती ही नहीं कभी। यथार्थ समझ इज इक्वल टू पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ की व्याख्या है। पुरुषार्थ कोई पर्याय को पलटाना उसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं, पर्याय को कोई पलटा ही नहीं सकता। अनादि काल से अनंत काल की पर्याय द्रव्य में खचित होकर भरी पड़ी हुई है, कोई उसको फेरफार कर नहीं सकता। सब क्रमबद्ध है, सब क्रमबद्ध है, सब पर्याय अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जहां होनी है वहां होती रहती है। अपने द्रव्य में जो काल में जो पर्याय जो समय जो भाव में जो निमित्त से जो रूप षटकारक से होने वाली है योग्यता से, वो ही होती रहती है, उसमें कोई फर्क कर ही नहीं सकता। अरे भैया अरियंत भगवान अपनी सिद्ध की पर्याय नहीं ला सकते, तो अज्ञानी की तो क्या ताकत की वो अपनी पर्याय को फिरावे। ऐसी पर्याय सब गुणों में, वो पर्याय रूप नहीं है अंदर गुण में पर्याय, मगर उसका सत्व अंदर पड़ा है, कहीं बाहर से नहीं आता, मगर वो गुण रूप है, वो गुण है, वो गुणी रूप है, मैं नायक भाव गुणी रूप हूं। ऐसी समझ करनी है, ऐसी यथार्थता समझ में लानी है, ऐसी द्रव्य स्वभाव को समझे तो द्रव्य स्वभाव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझे, द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र असंख्य प्रदेश, काल मेरा त्रिकाल, भाव अनंत गुण, और मेरा स्वभाव किसी से संयुक्त नहीं हुआ, ऐसा असंयुक्त मेरा स्वभाव है। ऐसे पांच भाव, पांच विशेषण जो कहे गए, ऐसे पांच विशेषण वाला एक त्रिकाल आत्मा है, वो मैं हूं। ऐसी समझ जब हो जाती है जीव की, तो उसी का नाम तो पर्याय दृष्टि छूट गई और पर्याय बुद्धि छूट गई, पर्याय का लक्ष्य नहीं हुआ वहां पे। तो ये समझ होनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि द्रव्य ऐसा है, द्रव्य में क्या क्या भरा है, अभी पर्याय में क्या है ना, वो सब पता है उसको। और पर्याय दृष्टि छोड़ के मैं नायक हूं ऐसा करने का पुरुषार्थ कर रहा है। अभी जो चीज आप कोई लौकिक में भी कोई चीज बाजार में लेने जाते हो, उसको पांच बार तो देखते हो, उसको ऊपर नीचे सब जगह देख लेते हो, क्योंकि वहां तो देने लेने का व्यवहार है, इसलिए वहां सब पूरी गिनती होके ही काम चलता है। अगर यहां तो, और उसमें पता भी चलता है नफा नुकसान का पता चलता है ना, यहां कितना नुकसान हो रहा है इसको नहीं समझ के उसको दिखता नहीं है वो, इसलिए इसकी कीमत उसको कम लगती है, दूसरी चीज की कीमत उसको ज्यादा लगती है।
इसकी कीमत जब लगेगी ना, स्वरूप समझेगा ना, तब इसकी कीमत भासेगी उसको कि ओहो मेरा स्वरूप ऐसा है। ये ज्ञानी लोग बता रहे हैं मुझे, मुझे पता ही नहीं ये मेरा स्वरूप है। मोक्षमार्ग प्रकाशककर्ता ने लिखा ना, ये बात का तो मुझे पता ही नहीं था, ये बात की तो मुझे खबर ही नहीं थी कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी परिपूर्णता ऐसी है, मेरा ज्ञायक भाव ऐसा है, मेरी भूतार्थता ऐसी है, मेरा अपरिणामी तत्व ऐसा है कि केवल ज्ञान रूप भी परिणमन नहीं हुआ कभी, वो परिणाम ही नहीं केवल ज्ञान रूप, वो अपरिणामी ही रह गया। केवल ज्ञान को परद्रव्य बोले और श्रुत ज्ञान को आत्मा बोले यहां, श्रुत ज्ञान को यहां आत्मा कहते हैं और नियम सार में केवल ज्ञान को परद्रव्य कहते हैं। देखो भैया, ये जिनागम में इतनी अपेक्षाएं भरी हुई है कि अपेक्षाओं का भी सम्यक ज्ञान न होवे ने जिसको, अपेक्षाओं का सम्यक ज्ञान, आत्मा का सम्यक ज्ञान तो दूर, अपेक्षाओं का भी ज्ञान यथार्थ जिसको नहीं होता वो कहीं न कहीं अटकता रहता है, कहीं न कहीं भ्रांति में भावावेश में चला जाता है। वो भाव बहुत अच्छे होते हैं उनको, उनके मगर भाव के अनुसार उसकी समझ नहीं चलती है, वो समझ नहीं चलती है। इसलिए समझ जिसको नहीं चलती है उसको कुछ पता नहीं चलता, वो तो एक दो घंटा सुन लेता है फिर तो वो संसार के माने कि पूरे प्रयत्न में लग जाता है, फिर दूसरे दिन सवेरे पढ़ती है तो फिर दो घंटा सुन लेता है। ऐसे सुनने और पढ़ने से काम नहीं होता भैया। सुनो पढ़ो, गुरुदेव बोलते थे, बहुत बार बोला गुरुदेव ने, वांचे पण नहीं करे विचार, ते समझे नहीं सगड़ो सार। वांचता है, सुनता है, विचार नहीं करता कि यहां अवध स्पष्ट कहा, अनन्य कहा, नियत कहा, अविशेष कहा, असंयुक्त कहा और बद स्पष्ट आदि भाव है वो सब अभूतार्थ है, क्यों ऐसा कहा? अभी ऐसा चल रहा है, ये दिख रहा है, ये मेरा ही परिणमन है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तो फिर ये ऐसा कहा तो उसमें क्या सोचना, द्रव्य का भाव कौन सा, पर्याय का भाव कौन सा, भेदनान कैसे करना, आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ क्या करना, ये सब विचार उसके ज्ञान में चलने चाहिए। जब तक विचारधारा नहीं चलती है तब तक चिंतन नहीं होता है। देखो पहले में पहले अध्ययन होता है, अध्ययन के बाद में विचार चलता है, विचार के बाद में चिंतन चलता है, चिंतन करते करते निर्णय होता है, निर्णय के बाद में अपूर्व निर्णय आता है, अपूर्व निर्णय के बाद में सविकल्प स्वसंवेदन आता है, सविकल्प स्वसंवेदन के बाद में निर्विकल्पता आती है। इतनी प्रोसेस है, ये प्रोसेस में से पार होना पड़ेगा उसको। ऐसे ऐसे आत्मा सरल जरूर है, जहां आत्मा से आत्मा है ना वहां से देखो तो एकदम सरल है, मगर विस्तार इतना करके बैठा है जीव और वहां से वो आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करता है, तो इसलिए दिखता ही नहीं उसको, सरल ही है एकदम। सत सरल ही होता है, सत सर्वत्र ही होता है, ज्ञान के सिवा कुछ जगत में है ही नहीं, जगत में सब जगह ज्ञान का ही विस्तार है, ज्ञान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं जगत में किसी को कुछ, क्योंकि ज्ञान के बिना ये मनुष्यपना वो भी पता ना चले, ये शास्त्र है ये भी पता ना चले, ये ज्ञानी पुरुष है ये भी पता ना चले, तो ऊर्ध्वता ज्ञान की है सब जगह पे, वो ज्ञान को अपन पहचानते ही नहीं है, उसकी समझ ही नहीं करते, उसका पुरुषार्थ ही नहीं चलता। सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, एकदम पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये काल ऐसा है कि इसमें गुरुदेव का जो रहस्य उद्घाटन हो गया, आचार्य भगवान के शास्त्रों का, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का, वो रहस्य उद्घाटन उसने कर लिया, वो अपन लोगों के लिए किया है कि तेरी स्थिति अभी बदलने वाली है, इसलिए हम आए हैं यहां। गुरुदेव बोले बलाड़ में, आखिरी आखिरी में जब प्रवचन हुआ तो गुरुदेव को किसी ने प्रश्न किया कि आपका यहां आना कैसे हो गया। गुरुदेव को बोला कि आपका यहां आना कैसे हो गया भरत क्षेत्र में। गुरुदेव बोले कि हमको तो सिमंदर परमात्मा ने भेजा है कि जाओ वहां बहुत भवी जीव है, उसका काल पक गया है, कुंदकुंद आचार्य तो वहां गए, अभी आप जाओ और उसका स्पष्टीकरण करो तो सब भवी जीवो मोक्ष में चले जाए। इसीलिए उसका अवतरण हुआ है यहां। खुद बोले गुरुदेव कि सिमंदर परमात्मा ने हमको यहां भेजा है। वो बोले ना 608 जीव जाते हैं 6 महीना और 8 समय में, तो अभी बुकिंग करा लेना, रिजर्वेशन तो होता है, अभी रिजर्वेशन होता है। मगर आजकल क्या हो गया, रिजर्वेशन के बिना जीव गाड़ी में बैठ जाता है, इसलिए उसको उतार दिया जाता है। रिजर्वेशन करा लो जल्दी से, तो गंतव्य स्थान तो आएगा ही। ऐसा ये स्वभाव बता रहे हैं यहां 14वीं गाथा में। वो 608 जीव वाली बात है। पूज्य गुरुदेव श्री को एक बार प्रश्न किया कि भाई ऐसा नियम है कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव जाते ही है? गुरुदेव ने बोला हाँ एकदम नियम है, तो निरंतर चलता है ये, तो जहां चतुर्थ काल चल रहा है वहां से जाते ही है, परमात्मा की जहां हाजिरी है वहां से निरंतर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव जाते हैं। फिर गुरुदेव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी, वो सब बहुत समझने लायक है। गुरुदेव ने बोला कि कोई ऐसा भी बनाव बन जाए कि 6 महीने तक एक भी जीव न जाए, 8 समय में 608 चले जाते हैं, ऐसा बोला गुरुदेव ने। आखिरी 8 समय में 608 चले जाते हैं, तो आप रिजर्वेशन करा लेना। और एक चर्चा संग्रह नाम का पुस्तक है, ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है उसने। इसमें ऐसा लिखा है कि इस पंचम काल में ऐसे 123 जीव है, 1 2 3 आप 1 2 3 कर लेना अभी, ऐसे 123 जीव है वो एकावतारी से आगे है। क्या लिखा है, सोगानी जी तो एकावतारी पुरुष है, श्रीमद राजचंद्र जी एक अवतारी पुरुष है, उससे आगे उसका मोक्ष होने वाला है। तो वो कैसे होगा भाई, तो एक शर्त है, यहां से मिथ्या दर्शन लेके जाना पड़ेगा। वो 123 जीव यहां से सीधे महावीदे में जाएंगे और वहां सिमंदर भगवान की देशना सुन के मुनि दशा प्राप्त करके यथाख्या चारित्र करके केवल ज्ञान करके मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसे 123 जीव है पंचम काल के शुरू से अंत तक। अभी कितने चले गए वो पता नहीं, वो तो केवली को मालूम है। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें ग्रंथों में शास्त्रों में लिखी हुई होती है। स्वाध्याय भैया बहुत जरूरी है। 4-5 घंटा जो स्वाध्याय नहीं करता है, गुरुदेव बोलते हैं उसको तो सही पूर्णबंध भी नहीं होता है। वो पूर्णबंध के लिए नहीं बोलते हैं वो, समझना। गुरुदेव ऐसा कोई शब्द निकाल देवे ना तो लोगों को ऐसा लग जाए 5 घंटा स्वाध्याय करो पूर्ण तो बनने लगेंगे, ऐसा आशय नहीं होता ज्ञानी पुरुष का कभी। वो कहना ये चाहते हैं कि तू 4-5 घंटा स्वाध्याय करके ऐसी पात्रता खड़ी कर दे कि तू मोक्ष मार्ग में प्रवृत्तिशील हो जा, ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसी पात्रता के लिए बताते हैं। गुरुदेव को प्रश्न किया एक बार नैरोबी में, और राजकोट में चंदूभाई डॉक्टर थे ना, वो प्रश्न बोध करते थे, तो 17-18 गाथा चल रही थी। तो अभी ये प्रकाश भाई ने बताया ना 17-18 गाथा का मर्म, जो 6ठी गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने लिखा, पर्याय में द्रव्य ही जानने में आता है, द्रव्य ही जानने में आता है, और कुछ नहीं जानने में आता है वो बोलने की जरूरत ही नहीं कि द्रव्य ही जानने में आता है, बस अपना तो काम इतना ही है, द्रव्य ही जानने में आता है, द्रव्य ही जानने में आता है, मैं द्रव्य ही हूँ, मैं द्रव्य ही हूँ। ऐसा गुरुदेव ने वहां नैरोबी में 17-18 गाथा ली, तो ये प्रकरण आया पैराग्राफ का, तीसरा पैराग्राफ वाला। तो गुरुदेव ने बहुत बार फरमाते रहे। तो वो डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया कि साहब ये ऐसी बात आप बोल रहे हो, यहाँ जो श्रोता है किसी को ये अभ्यास भी नहीं है, ये तो तैयार शिष्य के लिए बात लिखी है आचार्य भगवान ने। तैयार शिष्य माने क्या, जिसको नहीं निश्चय प्रमाण का पता है, निश्चय व्यवहार का पता है, उपादान निमित्त का पता है, स्वभाव विभाव क्या है पता है, उसके लिए लिखी है बात। आप तो ये बात यहाँ कह रहे हो। तो गुरुदेव का ये जवाब था कि ये तैयार शिष्य की बात नहीं है, ये पात्र शिष्य की बात है। आचार्य भगवान ने उसकी पात्रता देखी है कि वो अभी मोक्ष मार्ग में आके मोक्ष में जाने वाला है, ऐसी पात्रता देख के लिखा है आचार्य भगवान। आचार्य भगवान जो लिखते हैं ना, वो ऐसे ने ऐसे उसकी निर्विकल्प दशा की बूंद विकल्पात्मक दशा में नहीं खिरती भैया। वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे एक लाइन में लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होने वाला हो, ऐसी बात आचार्य भगवान लिखते हैं। विकल्प में आते हैं तब भैया कोई कोई आचार्य को लिखने का विकल्प आता है, ज्यादा करके तो वो अपनी निर्विकल्प दशा में आरूढ़ होके केवल ना लेके सिद्ध दशा में चले जाते हैं। ये तो अपनी जब योग्यता पकने का काल होता है ना, तब आचार्य भगवान द्वारा शास्त्र लिखा जाता है और अपने पास आ जाता है निमित्त रूप से। ऐसी कोई स्थिति है, इसलिए पुरुषार्थ ये मार्ग में बहुत जरूरी है। सच्ची समझ का नाम पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर चलना चाहिए, धारावाहिक। आज 4 घंटा सुन लिया, फिर कल नहीं सुना, फिर परसों नहीं सुना, फिर उसके बाद के दिन 8 घंटा सुन लूंगा, ये पुरुषार्थ नहीं है भैया। धारावाहिक चलना चाहिए निरंतर। कैसा भी काम हो, बेंसरी ने लिखा है कि कैसा भी तेरा काम हो, ज्ञान ध्यान का समय तू निकाल लेना। 4-5 घंटे तू समय नहीं निकालेगा तो भैया चारों गति का परिभ्रमण तैयार है तेरे लिए। कल बोला था ना कि विशेष औपचय कर्म है ना, वो कैंडिडेट होकर तैयार है। वो राह देखते हैं कि तुम राग करो, मैं सीधा निमित हो जाऊं। ये ऐसा है प्रकरण। इस तरीके से ये अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा 5 भाव स्वरूप एक आत्मा अखंड परमात्मा है। ऐसा मेरा शुद्ध अंत तत्व है, ऐसा मेरा ज्ञायक देव है। वो शुद्ध अंत तत्व के साथ में एक अशुद्ध अंत तत्व है, वो सब पद स्पष्ट आदि भाव है, उसको अशुद्ध अंत तत्व बोला जाता है। 40वीं गाथा है नियम सार की, देख लेना आप उसमें। ये शुद्ध अंत तत्व है त्रिकाली द्रव्य, और ये अशुद्ध अंत तत्व है। अशुद्ध अंत तत्व में सब ये बद स्पष्ट आदि भाव चल रही है, चल रहा है, और उसका अबद स्पष्ट नियत अविशेष अनन्य असंयुक्त के साथ ये अशुद्ध अंत तत्व का कुछ संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है ही नहीं। क्योंकि वो सब बद स्पष्ट आदि अशुद्ध अंत तत्व आदि भाव है, सब कर्म के खाते में जाते हैं, सब कर्म के खाते में है, उसके साथ अभेद होते हैं, और मेरा ज्ञान मेरे साथ अभेद होता है। ऐसे दो विभाग है, मेरा स्वाभाविक ज्ञान है, उपयोग लक्षण वाला जीव में हूं, वो मेरा ज्ञान मेरा ज्ञायक को कभी नहीं छोड़ता। बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, उपयोग में उपयोग ही होता है। ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से उसका निषेध कभी नहीं हो सकता। जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को ही जानता है, मेरा भेद रूप ज्ञान में भी अभेद ही जानने में आ रहा है। ऐसी बहुत सी गाथाएं पंच परमागम में भरी हुई है। तो मेरा ज्ञान मेरा ज्ञायक को छोड़ता नहीं, और बाकी के जितने अशुद्ध अंत तत्व रूप बद स्पष्ट आदि भाव है, वो सब कर्म की सत्ता के प्रकरण है। मेरा स्वभाव वहां कभी व्यापक होता ही नहीं। मेरा स्वभाव ज्ञायक तो सचमुच मेरा उपयोग में भी व्यापक नहीं होता। मेरा उपयोगवान में व्यापक हो सकता है। ऐसी स्थिति है भैया। ऐसा समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगलवार।